نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة بقرة تفسير آیت نمبر 8 سے تھوڑا سا ان آیتوں پہ جانے سے پہلے پیچھے والی آیتوں کے ساتھ اس کو جوڑیں گے ہم نے دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے سیدھا راستہ دکھا دے سارے لوگ ہدایت پانے کے لیے نکلے پہلا گروہ جنہوں نے اس ہدایت کو پانے کے سارے تقاضے نظر میں رکھے اور اس چیز کو اپنے نظر میں رکھا کہ ہدایت پانے کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کو بھی ماننا پڑے گا اور اس کی لگائی ہوئی پابندیوں کو قبول کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے ان کو متقین کہا کامیابیوں کے سرٹیفکیٹ دے دیے کہ اللہ خدم میں ربہم اور ساتھ ہی ساتھ بتا دیے اولائکہم المفلحون کہہ لیجئے کہ ایک گروہ خیر سے ہدایت کے سفر کو طے کر کے آگے پہنچ گیا آیت نمبر 6 اور 7 میں ہم نے دو آیتوں میں ایک ایسے گروہ کا حال پڑھا کہ جس نے شروع سے گیو اپ کر دیا اس نے کہا سوری ہم نہیں لے سکتے اس کے تو بہت سارے تقاضے ہیں اسلام تو بہت ڈیمانڈنگ ہے ہم اس کی ڈیمانڈز پوری نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاتے تو اٹس فائن وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یہاں سے اب ایک تیسرا گروہ ہے آپ لکھئے سٹرگلنگ گروہ دے آر کیپ سٹرگلنگ 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 کوشش کر رہے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں جو ہدایت کے سفر پہ چلنا چاہتے ہیں دل سے بھی چاہتے ہیں لیکن رستے میں بعض دفعہ کیا رکاوٹیں آتی ہیں کیا کچھ ہے آئیے ہم آیت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں کیونکہ آیت کے اندر بھی بہت سارا کچھ ہوتا ہے تو اسی کو ساتھ لیں گے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن يَقُولُ جو کہتا ہے آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وبالیوم الآخر اور قیامت کے دن پر حالانکہ وما ہم بمؤمنین وہ ایمان والے نہیں اگر آپ اس ایک آیت کو دیکھیں نا تو بہت عجیب آیت ہے بلکہ آپ کہہ لیجئے یہ بڑے عجیب و غریب جملوں سے بھری پڑی ہے اگر آپ اس کو اردو کی زبان سے کہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے جب ذہن میں کچھ اور چل رہا ہو اور دل کچھ اور کہہ رہا ہو حالات کچھ اور کہنا تو ٹوٹے پھوٹے جملے نکلتے ہیں تھوڑا سا ان آیتوں پہ غور کرنے کے لیے آپ آیت کو بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں گے تو پھر میری بات کو انجوائے کریں گے ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی چونکہ عربی کے ساتھ ہمارا اس طرح کا گہرا تعلق نہیں ہوتا نا تو ہم پریشان ہوتے ہیں لیکن آپ ان کی بکھلاہٹیں دیکھیں پہلے اس میں جمع اور واحد کا بھی فرق ہے اور بعض دفعہ پیچھے جو کہہ رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو پلٹتے ہیں دیکھیے و من الناسی و اور من سے انناس لوگ اب یہ کون ہے یہ ناس عام طور پہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں انڈائریکٹلی مدینہ کے لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے پیچھے سے بات چلتی آ رہی ہے کہ سورت بقرہ مدنی دور کے آغاز کی سورت ہے ابھی لوگوں کا پورا تزکیہ نہیں ہوا تھا ابھی لوگوں کو پوری طرح سے اللہ کی بات بتائی بھی نہیں گئی تھی اور ان سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بالکل نیا ماحول تھا مکہ میں اپنے تھے پیارے تھے جو کہ آپ کی بات کو پسند نہیں کر رہے تھے لیکن تھے کھرے پیچھے جملہ بولا تھا کہ مکہ میں یا تو کٹر مسلمان تھے یا کٹر کافر تھے سیدھی سی بات ہے اور یاد رکھیے کہ مکہ میں کوئی ایک شخص بھی غیر مسلم نہیں تھا وہ بات یاد رکھیے جو پچھلے سبق میں آپ سے شیئر کی تھی کہ غیر مسلم اور کافر کا فرق ہے کیسے دیکھیے میں کہتی ہوں کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایک بھی غیر مسلم نہیں تھا بلکہ سب کافر تھے وجہ پیغام پہنچ گیا قوم فانذر کا حق ادا کرتے کرتے مکہ کی گلی گلی کوچے کوچے آپ نے دعوت کا حق ادا کر دیا اب جو نہیں مانے تو ان پہ تو غصہ آنا تھا نا ان کو تو آپ کافر کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے بھی کہہ دیا اور حجت بھی تمام ہو گئی اب چلتے ہیں مدینہ میں جب آپ مدینہ میں آئے تو وہاں پہلے سے یہود تھے جو لوگوں کے ہاں بڑے دیندار معروف تھے کچھ لوکل لوگ تھے جو کہ بدوی تھے گاؤں دیہات میں رہتے تھے ان کا دین مذہب پیسہ ہوتا ہے فائدے لالچ جدھر فائدہ ملا ادھر چل پڑے تیسرا گروہ سچے مسلمانوں کا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی منتظر تھے آپ کے آنے کے اب یہاں کچھ لوگوں کے اندر کمی بیشی جب ہوئی تو ایک طریقہ کیا تھا آپ دیکھیے کہ پچھلی آیت کے ساتھ دیکھے تو ان اللہ زینہ کفر ہوں तो पहली बात तो इस आयत के जुमलों में क्या होनी चाहिए थी, अगर पिछली ही बात से ले लीजिए कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू थे वो, तो ये इन्नल्लज़ीना नाफ़कू, ये तरकीब होती है, इसको लिखें। ये आयत ऐसे आनी चाहिए थी, इन्नल्लज़ीना नाफ़कू, बात वाज़े, जैसे कुछ ने कुफर किया, अब कुछ ने निफाक किया। लेकिन अल्लाह ताला ने ये जुमला इस्तेमाल नहीं किया। वाय, क्योंकि इब्तदाई दौर था। पूरी सूरत बकरा में मुनाफिकों के तज़किरे हैं, इस रुकू में तो निशानियां भी बहुत सी हैं, नाम नहीं लिया। क्यों? इनकी निशानियों से इनको पहचानो। एक फायदा ना लेने का क्या है कि अल्लाह ताला ने पर्दा रखा उनका। दूसरा बात है कि अगर यहां कह दिया जाता इन्नल्लज़ीना नाफ़कू फी मदीना, ये इन्नल्लज़ीना नाफ़कू फी अहदिर रसूल, तो फिर हमने क्या कहना था, हाथ झाड़ के, ये आयतें तो वो मदीना के यहूद के लिए हैं, हमारे आपके लिए तो नहीं है। अल्लाह ताला ने यहाँ निशानियां देकर बताया कि हर दौर में इन निशानियों को मेयार बनाते जाओ और मुनाफिकों को देख लो। ठीक है, चलिए अब जरा जुमला देखिए क्या है। मैं यकूलू, मन अरबी जुबान में ना वाहिद के लिए आता है, मैं यकूलू वो एक शख्स कहता है, ये बात साबित है ना, वो एक शख्स कहता है उर्दू में, क्या कहता होगा, आमन्ना बिल्ला, या क्या जुमला आना चाहिए था। अगर ये जुमला बिल्कुल स्ट्रेट जुमला होता ना, तो इसका जुमला कैसे बनता, मैं यकूलू आमन्तु बिल्लाही। जिसको थोड़ी सी भी ग्रामर की समझ है वो इस जुमले को समझ जाएगा। एक शख्स है, क्योंकि वाहद है, क्या कहते हैं, आमन्तु बिल्ला, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। लेकिन यहां बुखलाहट देखिए, पहली बात है एक शख्स कहता क्या है एक शख्स जो कहता है हम ईमान लाए अल्लाह पर। बात समझ गए, जैसे बच्चा नए नए जुमले बोलना नहीं सीखता तो मुजक्कर मुअन्नस की गलतियां करता है, वाहिद जमा की गलतियां होती हैं। या ये जुमला होना चाहिए था कि बहुत सारे लोग हैं यकूलू ना आमन्ना बिल्ला, ठीक है, लेकिन यकूलू के बाद आमन्ना बिल्ला का जुमला एक तो उनकी बुखलाहट साबित करता है, दूसरा यहां लफ्ज देखिए यकूल, कहने पे जोर है। मुनाफिक का सबसे बड़ा जो एक मसला होता है ना, बातें कहना, मैं सच्चा साबित हो जाऊं, मैं बहुत ईमान वाला हूं। इसके बरक्स आप देखिए कि जो हकीकी ईमान वाला होता है ना, उसको कभी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं ईमान वाला हूं, मैं तहज्जुद पढ़ती हूं, मैं बड़ी मोमिना हूं, मैं बड़ी सादिका हूं, मैं बड़ी मुतसद्दिका हूं, मैं आमिला हूं, आलिमा हूं, वो नहीं कहता। सीधी सी बात है, सच्चा मोमिन अपने अमल से दिखता है। अस्सलामु अलैकुम कहेगा तो इस्लाम का पता चल जाएगा, नमाज के वक्त में जाएगा नमाज पढ़ेगा तो लोगों को उसके ईमान का पता चलेगा। तो यहां एक बात नोट कीजिए कि मुनाफिक को मुंह से कहकर वो बात मनवानी पड़ती है, जो सच्चे मोमिन को अपने अमल से दिखानी पड़ती है। काफिर का बहुत बड़ा मसला लोग होते हैं, जुबानी दावे, ईमान लाने से ज्यादा ईमान को जतलाने पे जोर है। अब आपके मेरे पास बड़ा ईमान है और मैं बड़ी नेक हूं और मैं बड़ी तहज्जुद गुजार हूं, बुरा लगेगा ना, क्योंकि सच्चा मोमिन है ना, उसको पता होता है कि मैंने अपने ईमान को जरा सी हवा लगा दी तो वो तो उड़ जाएगा। जैसे आप देखिए पकते चावलों को अगर आप खोल दें तो लोग कहते हैं हवा लग जाती है, जिस चीज की बहुत तारीफें करने लग जाए वो लोगों की नजरों में आती है। तो सच्चा ईमान तो छुपाने वाला होता है, वो कहता है कहीं मेरा ईमान जाया ना हो जाए, रियाकारी का ना हो। लेकिन मुनाफिक क्या कहता है, क्या मैं ईमान वाला हूं, मुनाफिक क्या कह रहा है, मैं ईमान वाला हूं। दूसरा इसमें यह है कि फिर इसने आमन्ना बिल्ला क्यों कहा, अब एक और रीजन देखिए, जमा का सीगा क्यों लिया है, तो मुनाफिक की एक और अलामत दिख रही है, सच्चे मोमिनों के बीच में घुल मिल के रहना चाहता है। अब हम जाते हैं ना क्लासों में और हम सब जाते हैं ना दावा करने, यानी सहाबा के ईमान की ढाल में वो अपने खोखले ईमान को छुपाना चाहता है। जैसे अपने अमल में कमी होती है ना, तो दूसरों को दिखाने और जितलाने के लिए क्या कहते हैं, हाँ हाँ हम बहुत करते हैं ना, हम भी बहुत अर्ज कराते हैं। वो मेरे ससुर जो थे ना वो हाफिज थे, और वो मेरे शौहर के मामू के फुलां जो है ना वो बड़े नेक थे। भाई आप क्या थे, अरबी जुबान की एक कहावत है कि फारसी की एक है ना कि पिदरम सुल्तान बूत, मेरा बाप बादशाह था। इसी तरह अरबी जुबान की एक कहावत है जिसका तर्जमा क्या है कि खच्चर जो होता है ना वो गधी और घोड़े के मिलाप से पैदा होता है। एक तरफ गधा होता है और एक तरफ घोड़ा होता है, दोनों के मिलाप से जो बच्चा पैदा होता है उसको खच्चर कहते हैं। तो खच्चर क्या कहता है कि मेरा मामू घोड़ा था, समझ आए, मामू घोड़ा था लेकिन बाप तो खच्चर है ना, तो वो फिर अपनी नस्बत बाप की बजाय मामू से जोड़ता है। मुनाफिक थोड़ी नेकी करके ज्यादा नेकियों में नाम लिखाना चाहता है। हमारी जुबान में भी इसके लिए एक तो मुहावरा है, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाना। यहां वही अंदाज है, आमन्ना बिल्ला, हम सारे बड़े ईमान वाले हैं, हम बड़े नेक हैं, ये मुराद है। हालांकि सूरत मुनाफिकून आप देखेंगे जो बाद के दौर में नाजिल, उसकी बिल्कुल पहली आयत में अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला बिन उबई और उस जैसे कुछ लोगों का पोल खोल दिया कि जा जा कल मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नकल रसूलुल्लाह। जब आपके इस मुनाफिक आते हैं कस्में खा खा के कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, हालांकि उसी आयत में आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह को पता है कि ये झूठे हैं और इनकी बात झूठी है। क्या पता चला कि ये झूठी कस्में खा खा कर अपनी मोहब्बतों का यकीन दिलाना चाहते हैं। चलिए आमन ना बिल्ला कह दिया, बात हो गई, मान लेते हैं, ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आगे देखिए, पबिल यौमिल आखिर, और हम आखिरत पर भी ईमान लाते हैं। भाई ये क्या तुक हुई आपकी, क्या आमन्ना बिल्ला कहने के बाद आपको बिल योमिल आखिर की जरूरत थी? और खास तौर पर आप देखिए जो बा लगी हुई है ना, ये बड़ी अहम है। ये जुमला अरबी की तरकीब के एतबार से देखे तो क्या हो सकता था, मैं यकूलू आमन्ना बिल्लाही वल योमिल आखिर, ऐसी है ना, दोबारा बा की जरूरत नहीं थी, लेकिन आमन्ना के बाद बा साथ दोबारा एक्स्ट्रा लगी, इसको बाए तौकीद कहते हैं, ताकीद के लिए, और एम्फेसाइज कर रहे हैं अपने ईमान को और खुलाना चाहते हैं कि हम अल्लाह पर भी ईमान लाते हैं जी, और हमें आखिरत का भी पता है, हमें पता है मरना है, हमें पता है जन्नत है, हमें पता है जहन्नम है। अच्छा यहाँ पे आप एक छोटा सा कॉमा लगा लें, उनका कॉल ख़त्म हो गया, अल्लाह ताला का कमेंट, वमा हुम बिमोमिनीन, वो कोई नहीं है ईमान वाले, वो ईमान वाले है ही नहीं है। उन्होंने क्या कहा, आमन्ना बिल्ला, अल्लाह ताला ने कहा वमा हुम बि मोमिनीन। ये जो वमा हुम बि मोमिनीन है ना, ये भी बड़ा खूबसूरत है। अरबी जुबान में जो माँ का लफ्ज आता है ना किसी चीज को मना करने के लिए, माँ को कहते हैं ली रद्दिल खता, कोई गलती थी उसको दूर करने के लिए आप माँ की बात कहते हैं। ये जुमला कई मुख्तलिफ तरीके से हो सकता था, मसलन अल्लाह ताला कहते कि ला यूमिनून, ये कोई नहीं है ईमान वाले, ये भी हो सकता था लईसु मोमिनीन, ये ईमान वाले ही नहीं है, लईसा भी मोमिनीन भी आ सकता था, लेकिन यहां क्या है, वमा हुम बि मोमिनीन। अरबी जुबान में ये ताकीद दर ताकीद है, जब पता हो किसी बात का, लईसा कब आता है, जब आप किसी से सवाल पूछते हैं फुलां आ रहे, तो आप कहते हैं वो नहीं आ रहे, लईसा आप कहेंगे, लईसा आते हैं, वो नहीं आ रही, ठीक है। ये जो लफ्ज है ना मा हुम बि मोमिनीन, किसी की बात को रद्द करने के लिए आता है। यहां उनका एक झूठा दावा था, उन्होंने ये दावा किया, अल्लाह ताला ने उनको खोल के रख दिया कि ये ऐसी बातें कर रहे हैं, इनके ईमान के दावे झूठे हैं। सच्चे मोमिनों को और जो काम करते हैं ना उनको कह कह नहीं बताना पड़ता मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बस आप देखिए कि आप अपने बच्चों को कितनी दफा बैठ के लव स्टोरी सुनाते हैं, मेरे बच्चे मुझे तुमसे बड़ा प्यार, तुम बड़े प्यारे, मेरी आंखों के तारे, राज दुलार, कभी वंस अ वाइल, कभी आपने साल 6 महीने में एक बार कह दिया होगा। सारा दिन आप 24 घंटे अपने बच्चे के मोहब्बत के तकाजे पूरे करते हैं ना। सच्चे मोमिनों के पास इतना वक्त ही नहीं होता कि वो अपने ईमान के गुण गाएं, अपनी मोहब्बतों और अपनी सच्चाइयों के गुण गाएं। यानी वही कहते हैं ना कि जो दावे बड़े करते हैं उनके पास अमल के लिए वक्त ही नहीं होता। मुनाफिक करता कराता कुछ नहीं है, खोखला, शैलो, अंदर से खोखला होता है, ऊपर से बन के दिखाता है, इसलिए अल्लाह ताला ने उसकी इस बात को यहाँ बयान कर दिया कि ये बातों के धनी है। अच्छा सर, आप यहाँ थोड़ा सा एक और एंगल देखिएगा। आपको बताया था कि ईमान के 3 बुनियादी हिस्से होते हैं ना, ईमान बिल्ला, ईमान बिर रसूल और ईमान बिल आखिरा। 13 साल मक्का में यही सबक पढ़ाए गए। जरा इस जुमले को देखिए, मुनाफिक के किस ईमान में कमी है? यकूलु आमन्ना बिल्ला में अल्हम्दुलिल्लाह ईमान बिल्ला है, बिल यौमिल आखिर में ईमान बिल आखिर है, कौन सा मिसिंग है फैक्टर? ईमान बिर रसूल। तो लिख लीजिए, हर दौर के मुनाफिकों का सबसे बड़ा मसला ईमान बिर रसूल होता है। رسول کی سنتوں پہ عمل کرنا، رسول کے طریقوں پہ چلنا، یہ ان کو اچھا نہیں لگتا. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ رسول کے طریقے اور ویسٹرن لائف سٹائل ساتھ نہیں چلتا. رسول کا طریقہ لیں گے تو سادگی ہوگی، تو منافق کو رسول اچھا نہیں لگتا. اور سیدھی سی بات ہے کہ رسول کو نکالو تو صلات کا اپنی مرضی کا ترجمہ کر لو. تالیاں بجاتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اب کوئی یہاں بنائے ایک چھوٹا سا برف کا پتلا اور بیٹھ جائے آگے عبادت کر دیں، کیا کر رہے ہو؟ صلات کر رہا ہوں. بھائی کس نے کہا؟ کہتے ہیں ڈکشنری میں جا کے دیکھ لو آگ تاپنے کا مطلب ہے. کوئی آگ جلائے اور ہاتھ تاپنے لگے وہاں جا کے، بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہے گا صلات پڑھو، کیونکہ یہ ڈکشنری میں آتا ہے کہ ہاتھ تاپنے کا نام آگ ہے. رسول نے بتانا ہے کہ اللہ کون ہے، ٹھیک ہے؟ تو رسول کا مسئلہ تھا. خیر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، پھر آپ کو ذرا سا ان باتوں کے اوپر واپس لے کر آؤں گی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وما ہم بمومنین. ہے کون تھے یہ؟ مدینہ کے وہ لوگ جو عبداللہ بن ابی کے ہم خیال تھے. یہ کون تھا؟ اس کو میں آگے تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، لیکن ابھی ہم تھوڑا سا لفظوں کے ساتھ کھیل لیں. کرتے کہ اگلی آیت، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، حالانکہ وما یخدعون، وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، الا مگر انفسہم، اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے. ذرا سا لفظ خدا کو سمجھیے، یہ جو لفظ ہے نا دو دفعہ اس کو ہائی لائٹ کرے، یخادعون اور یخدعون، ساؤنڈ میں آپ کو فرق دکھ رہا ہے؟ دیکھیے لفظ یخادعون جو ہے نا یفاعل کے وزن پہ فاعل، اور یخدعون دونوں میں بہت فرق ہے. ان کا روٹ کیا ہے؟ خادال عین. خدا کہتے ہیں عربی زبان میں دھوکہ دینے کی کوشش کرنا. بس آپ دیکھیے کہ آپ کے اس کپڑے پہ کہیں انک لگ گئی، تو آپ انک سے بچانے کے لیے آپ اس کو ایسے پلٹ کے تہ کر کے اس کی تہ کو اندر چھپا لیتے تاکہ دوسروں کو نہ پتہ چلے کہ اس پہ سٹین لگا ہے. اس کیفیت کو عربی زبان میں خدا کہتے ہیں. اور یہ جو لفظ ہے نا یخادعو، اس کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، اور ضروری نہیں کہ پوری بھی ہو جائے. جبکہ لفظ ہے نا یخدعون، اس میں کیا کہ دے چکے، یہ مطلب ہے. مخادعہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا. اس کوشش میں بعض لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، بعض لوگ کامیاب نہیں ہوتے. پھر دہرا دیتی ہوں کہ یہاں لفظ ان کے لیے آئے یخادعون، مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک بڑی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات عجیب لگتی ہے نا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے لیتے ہیں. نہیں، خا کے اوپر جو کھڑی زبر ہے نا، میں اس کی تفسیر کر رہی ہوں اس وقت. اگر آپ ترجمے میں یا تجوید میں یخدعون پڑھ دیں گے نا شروع میں، یخاد ہی ان کو، خا کو لمبا نہیں کریں گے، تو معنی پتہ کیا ہوگا؟ بالکل بدل جائے گا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے چکے. یخاد ان کا معنی ہے کہ کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی دے سکتا ہے کبھی نہیں دے سکتا. بات واضح؟ مخادعہ کیا ہوتا ہے؟ اس شخص کے حق میں جس پر کچھ باتیں چھپی ہوں تاکہ اس کو کوئی دھوکہ دے سکے. کوئی شخص کسی کو لا علمی میں نقصان پہنچائے، اس کو خدا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ اس سے تو نہ کوئی چھپا ہوا ہے نہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں. اور یہاں یخادعون اللہ سے مراد پتہ کیا ہے؟ لکھ لیں، یخادعون رسول اللہ. یخادعون رسول اللہ، اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے آگے آپ پڑھیں گے سورہ فتح میں آتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جو لوگ آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں اصل میں وہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں. پھر اسی طرح آتا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو یہاں دھوکہ دینے کی کوششوں کا تذکرہ ہے کہ یہ دھوکے دینے کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن یہ دے نہیں پائیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا دھوکہ کیا تھا؟ دل میں کچھ، زبان پہ کچھ. مخادعہ کیا ہوتا ہے؟ کہ بندہ دوسرے کو وہ باتیں یقین دلائے جو اس کے دل میں نہ ہو اور اپنا مقصد حاصل کر لے. اسی طرح منافق کا دھوکہ اپنے رب سے اور مومنوں سے کیا ہوتا ہے؟ کہ زبان کی بات سے اظہار اور تصدیق کرتا ہے لیکن دل میں شک ہوتا ہے. پھر اسی طرح منافق کا دھوکہ کیا ہے؟ ایمان کا اظہار کرتا ہے جبکہ دل میں کفر ہوتا ہے، کر نہیں سکیں گے. کیوں کرتا ہے ایسا؟ منافق کس چیز سے تحفظ چاہتے ہیں؟ یہ سوال لکھیے. کیا ضرورت ہے ان کو اتنے دھوکے دینے کی؟ کھل کے کہہ دیں کافر ہیں. نہیں، منافق دنیا میں قتل ہونے، قید ہونے اور دنیاوی سزاؤں سے بچنا چاہتے ہیں. अल्लाह ताला कहते हैं ममा यखदाउन, और नहीं धोखा देते, यानी अब यहाँ दे चुके, इल्ला अनफुसहुम, अपनी जानों को, ममा यशउरून, और इनको इसका शऊर भी नहीं। ये जो लफ्ज़ है ना यशउरून, शार से है, शीन आइन रा कहते हैं बाल को, बाल जैसी बारीक समझ, अंडरस्टैंडिंग। मुनाफिक का सबसे बड़ा मसला पता क्या है? बेशऊर है, उसको पता ही नहीं मुझे शुगर है, चीनी खाई जा रहा है, उसको पता ही नहीं मुझे ब्लड प्रेशर हाई है और वो नमक खाई जा रहा है, उसको पता ही नहीं कि मेरा वेट गेन हो रहा है और वो चिकनाई खाई जा रहा है। ये मुराद है, गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लादता ही जाता है, लादता ही जाता है, और उसको पता ही नहीं चलता कि एक दिन मेरी जान ही निकल जाएगी। तो शऊर अरबी में इल्मे हिसी को कहते, महसूस करना। उर्दू में जैसे आप कहते हैं ना एहसास होना, तो आप कह लीजिए कि मुनाफिक को एहसास नहीं होता, बेहिस होता है वो शख्स। इसी तरह से ये जो इंसान के आलात है ना, हवास, यानी आंखें, कान, सूंघना, चखना, इनको मशायर कहते हैं, ठीक है। शियार, बाल, इसी से शियार भी हैं इस्लाम के, यानी बहुत सेंसिटिव थिंग्स की तरफ इशारा है। मतलब क्या है कि ये बंदा अल्लाह को भी और ईमान वालों को धोखा देना चाहता है लेकिन दे नहीं पा रहा, यानी इसकी कोशिश नाकाम है, अपनी सारी कोशिशों के बदले में ये कुछ कर नहीं पा रहा। और होता क्या है उसके बाद, फी कुलूबिहिम मरदुन, इनके दिलों में मरज है। बड़ी खूबसूरत तरकीब है ये भी, फी कुलूबिहिम मरदुन, इतना लंबा जुमला बोला है ना, हालांकि ये आराम से ये जुमला हम उर्दू में ऐसे बोल सकते थे, उनके दिल मरीज हैं, कल्बुन मरीदुन, नहीं, वफी कुलूबिहिम मरदुन से क्या पता चलता है कि उनके दिलों में जो बीमारी है ना, उसका असर अब उनके बाकी जिस्म पर भी हो चुका है। मरज कहते हैं अरबी जुबान में जिस्म के इतदाल का बिगड़ना, मसलन बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो तो आप काम करते हैं, बुखार हो जाए तो जिस्म का इतदाल बिगड़ जाता है ना। शुगर क्या है, शुगर लेवल का इतदाल या बैलेंस बदल गया, हाई या लो ब्लड प्रेशर भी इतदाल का बिगड़ना है। तो मरज है, अरबी जुबान में बीमारी के बहुत सारे दर्जे होते हैं, मरज जो है ये एक आम दर्जा होता है, इसका इंशाल्लाह आगे जाके आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखा दूंगी। अब ये मरज इंसान को दो तरह से लाहक होता है, एक है कि हकीकी आज़ाद, जैसे जिस्म के मरज, आपको मिसाल है खांसी है, जुकाम है, कुरान पाक में आता है वला अलल मरीदी हरजुन, सूरत नूर में आता है कि मरीज पे कोई हरज नहीं है। लेकिन दूसरी जो मरज की वजह होती है ना, वो दिल की बीमारियां होती हैं, अखलाकी मरज, कल्बी मरज, बुखल, बुजदिली, इनात, कीना, बुगज, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो गोया के मुनाफिक को दिल की बीमारियां होती हैं, फिर कुलूब ही, कुलूब जमा है, यहाँ फिर आप देख रहे हैं वही वाहिद जमा का जो पीछे से खेल चल रहा है ना, वही इधर है। मुनाफिक है एक शख्स, लेकिन वो एक पूरे गिरोह को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में बीमारियां। क्या बीमारियां? हुब्बे दुनिया, कुफर, निफाक, लालच, धोखा, सुस्ती, नफरमानी, ये सारी बीमारियां लगी हुई हैं। और आप देखिए इन्हीं की वजह से बंदा हमेशा अल्लाह को नाराज करता है। मुनाफिक की बीमारी क्या होती है कि वो दुनिया भी नहीं छोड़ना चाहता और आखरत भी लेना चाहता है। वो कहता है हेयर और देयर, नहीं, हेयर भी और देयर भी, एक है हेयर आफ्टर, एक है देयर आफ्टर। मुनाफिक बड़ा होशियार बनता है, वो कहता है कि मुझे अबू बकर नहीं बनना जो अपने घर का सारा सामान ले आए थे, नहीं, मैं अब्दुल्ला बिन उबई बनता हूँ, दुनिया की सदारत, चुदराहट सब कुछ भी ले लूँ और आखिरत में मुझे जन्नत भी मिल जाए। अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या चीज़ आपकी ज़्यादा होगी, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा। इतना खूबसूरत जुमला है ना, अगर मैं आपके साथ अरबी की वजाहत करूँ ना तो आप आशिश कर उठेंगे। ये जुमले कई तरह और से हो सकते थे, अल्लाह ने बढ़ा दी उनकी, आप जैसे ये उर्दू में बोलते हैं ना अल्लाह ने उनको बीमार कर दिया, ये जुमले ऐसे बोलते हैं ना, या आप कह सकते हैं अल्लाह ने उनको बीमारी में बढ़ा दिया, या एक जुमला ऐसे भी हो सकता है कि अल्लाह ने उनकी बीमारी बढ़ा दी। यहाँ के फजादा हम, ज़्यादा का लफ्ज़ वही है जिसको उर्दू में अब ज़्यादा कहते हैं, ज्यादती, ज़ाद, ज़्याद, यानी ज़्यादा, ये वही लफ्ज़ है जिसको आप ज़्यादे राह भी कहते हैं, मुसाफर का ज़्यादे सफ़र, खाना सामान जो लेकर चलते हैं तोशे को कहते हैं, सफ़र के लिए जो खाना पानी साथ रखा जाए उसको ज़ाद कहते हैं। इसका रूट क्या है? ज़ाल वाओ दाल। क्या पता चला इनके दिलों में हसद और बुग़्ज़ की बीमारी थी, अल्लाह ने इनको ये सज़ा दी कि इनकी जिंदगी का सामान हयात ही हसद को बना दिया। समझे, जो बीमारी इन्होंने शुरू में रखी अल्लाह ने उसको पाल के वही उनकी जिंदगी का गम बना दिया। जब जब कुरान की वही नाजिल होती थी इनका मर्ज बढ़ता जाता था, इनकी बीमारियां बढ़ती जाती थी। तो फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, जो बीमारी का बीज इन्होंने अपने दिल में बोया अल्लाह सुबहान ताला ने इनको उसमें ज्यादा कर दिया। वही बात है कि जब बीमार अपने आप को बीमार ना समझे, परहेज ना करे, तो दिन बे दिन बीमारी बढ़ती है ना। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, दुख देने वाला। क्यों, वजह यहां से आप देखिएगा इनकी सिम्टम्स, निशानियां। बीमा कानू यक जीबोन, लिखिएगा वन नंबर लाई गए, पीछे क्या आया था लाज शुरून, वो आगे भी आएगा, इसलिए यहां से शुरू कर लें। मुनाफिक की अलामतों में पहली चीज क्या है, यक जीबोन, कानू यक जीबोन। आपने इंग्लिश में ग्रामर पढ़ी है, उर्दू में पढ़ी है, माजी इस्तिमरारी क्या होती है, या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कानू यकजीबुन, एक होता है यकजीबुन, वो झूठ बोल रहा है या बोलेगा, कानू लग गया ना, तकरार है, बोलता था, बोलता है, बोलेगा, कीप गोइंग, कीप गोइंग का मानी है। अल्लाह ताला कहते हैं मुनाफिक के खून में झूठ शामिल हो जाता है, बात बे बात झूठ बोलता है। दिल में बीमारी थी अल्लाह ने बढ़ाया, दर्दनाक अजाब है। अच्छा, काफिर के लिए पीछे क्या लफ्ज आया था, अजाब अजीम। क्यों अजीम था, क्योंकि खुद को बड़ा समझा। मुनाफिक के लिए अजाब अलीम क्यों आया है, ये समझिएगा। जितना इस्लाम को मुनाफिकों ने तकलीफ दी है, इतना कुफार ने नहीं दी। आप कह सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफारे मक्का ने इतने दुख नहीं दिए जितने मुनाफिकीन मदीना ने दुख दिए। तो जिसने इस्लाम को दुखी किया, मुसलमानों को दुखी किया, अल्लाह ने उनको वही बदले में अजाब अलीम पकड़ा दिया। बात समझे, अरबी जुबान का एक मुहावरा कि जजाउ सैयतु मिस्लिहा, कुरान की एक आयत भी है लेकिन उर्दू में इसको समझ लीजिए कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा जुर्म होता है ना वैसी सजा होती है। आपको दुनिया में पता है ना, कोई छोटा जुर्म है तो थोड़ी देर की सजा हो जाएगी, कोई ज्यादा जुर्म करेगा तो ज्यादा देर जेल में रहना पड़ेगा, चोर की सजा कुछ और है तो शराब पी की सजा कोई और है ना। तो इनका जुर्म क्या था कि इन्होंने मुसलमानों को तकलीफें दी थी, टॉर्चर्स दिए थे, नबी सल्लम को भी तकलीफें दी थी, अल्लाह ताला ने इनको भी वलहुम अज़ाबुन अलीम दिया। क्यों, बीमा कानू यकसिबून, क्योंकि ये झूठ बोलते थे, आदत थी इनकी, पहला जुर्म। दूसरा लिखिए, वइज़ा क़ील लहुम, और जब इनसे कहा जाता था ला तुफ़सिदु फ़िल अर्दी, जमीन में फसाद ना करो, قالوا انما نحن مصلحون, तो कहते थे हम तो मुसलह हैं, इस्लाह करने वाले हैं। ये जो लफ्ज है ना तुफसिदु, फसदा, फसाद, ये क्या होता है, फसाद कहते हैं बिगड़ जाना, किसी चीज का डीकम्पोज होना। आप रात को फ्रेश खाना पका के छोड़ते हैं, फ्रिज से निकाल कर बाहर रखा, सुबह उठे तो उसमें बबल्स बन गए, डीकम्पोज हो गया, बू आने लगी। तो फसाद क्या होता है, ताल्लुकात का बिगाड़। एक क्या है, अल्लाह के साथ बंदों के ताल्लुक बिगड़ जाएं, और एक बंदों के बंदों से ताल्लुक बिगड़ जाएं। और नाम क्या देता है, हम मुस्लिहून हैं। तो मुनाफिक की दूसरी अलामत इस आयत से नोट कीजिए, नंबर टू लिखकर, पहली क्या थी, मुसलसल झूठे, दूसरी क्या है, फसाद का नाम इसलाह रखते हैं। क्या कहते हैं लोग, बड़ी नसीहत आमोज फिल्में हम देखते हैं, फलान ड्रामे से बड़ी नसीहत मिली, बड़ी घरेलू फिल्में हम देखते हैं, ये नहीं पता कि उससे फैशन और बेहजाई और बदनजरी सामने आती है, वो नहीं पता। गलत चीज, फॉर कहते ना फॉर ए गुड कॉज, वही मानी है कि मुनाफिक गलत काम नेकी के लेबल में करता है, यानी जहर की बोतल पे दवा का नाम लिख के बेचता है। चलिए, अल्लाह इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, अल्लाह कहते हैं बेशक यही मुफसिद है, तुम इनको कुछ कहो ना को, ये माने ना माने, लेकिन अल्लाह का फैसला कि यही मुफसिद है। और मुफसिद मुफ़इल का वजन होता है, फसाद करने वाला, टाइटल है वला किल्ला यशुरून। ये तीसरी खूबी नोट कीजिए, मुनाफिक की तीसरी अलामत ला यशुरून, शऊर नहीं है, उसको खुद अपना नफा नुकसान नहीं पता, जिंदगी में क्या करना था क्या नहीं करना था उसको नहीं पता था, अपने आप के साथ ऐसी बातों पर लगा रहता है। अगर आप सिर्फ इतनी आयतों पर रुक कर देखिए तो पहली बात देखिए कि इन्होंने अपनी जुबान से ईमान का इजहार किया, अल्लाह ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अल्लाह ताला डिडंट एक्सेप्ट देयर क्लेम टू बी मुस्लिम। आमन्ना बिल्लाही व बिल यौमिल आखिर, अल्लाह कहते हैं रिजेक्ट करो फरिश्तों, वमा हुम बि मोमिनीन। आप कहते जब ये आयत उतरी थी ना, वमा हुम बि मोमिनीन, सहाबा डर गए थे, कांप गए, कहने लगे कहीं अल्लाह ताला हमारे ईमान की भी नफी ना कर दे। और यही डर ईमान की अलामत है। हदीस में आता है कि निफाक से खुद को मुतमईन कौन समझता है? मुनाफिक। मा अमीनहु इल्ला मुनाफिकन वला खाफ इल्ला मोमिनन। जिसे निफाक का डर हो वो पक्का मोमिन होगा। 70 से ज्यादा सहाबा कराम को अपने ऊपर निफाक का शुबा था, जिसमें हजरत आयशा तक का भी नाम आता है कि वो कहती थी कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गई। याद रखिएगा, इस पे इंशाल्लाह हम आगे कल बात करेंगे। सारी बात जितनी पड़ी है ना, इसका समअप कर देती हूँ अभी आपको, कि हिदायत के सफर पे चलने वाला तीसरा गिरोह दिल का रोगी, जुबान पे कुछ, अमल में कुछ। दुनिया भी लेना चाहता है, आखिरत भी लेना चाहता है, ना दुनिया छोड़ना चाहता है ना आखिरत छोड़ना चाहता है, लेकिन अंदर बीमारियां इतनी हैं कि दीन के तकाजे पूरे नहीं होते। सोचता है कुछ जुबानी कलामी नेकियां करके अल्लाह को भी खुश कर लेता हूँ तो ईमान वालों को भी खुश कर लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, ना अल्लाह भी खुश रहेगा, बंदा भी खुश रहेगा। अक्ल के दर्जे पे परखता है अपने ईमान को। जो मैं जुमला अपनी तरफ से अगर आपको दूँ ना मुनाफिक के लिए, कि ईमान दिल का सौदा था, मुनाफिक उसको अक्ल की कसवटी पे परखता है। हाँ ये कर लेती हूँ मगर इससे ये नुकसान हुआ, फिर नहीं करूँगी। ओके, कर लेने में दुनिया का कोई नुकसान है, ठीक है, इट्स फाइन। यानी वो हर वक्त एक तराजू एक बैलेंस हाथ में रखता है। अल्लाह का कोई हुक्म सुनता है ना तो उसको पहले तोलता है, इससे मेरी दुनिया तो नहीं जाएगी, इससे मैं कोई ज़्यादा दीनदार तो नहीं लगने लग जाऊंगी, ये नहीं करूँगी वो नहीं करूँगी, तो वो पीछे चल पड़ेगा। याद रखिए कि ईमान के दो दर्जे होते हैं ना, एक होता है अकली दर्जा, आप अपनी अक्ल से ईमान लाते हैं, यानी ला रही बफी, शक ही नहीं है इस्लाम पे, अल्लाह पे, ईमान पे। जैसे कोई आपसे कहे गाड़ी के चार पहिए, आप कहते हैं पूरा ईमान है मेरा। एक दूसरा दर्जा होता है जिसको दिल का दर्जा कहते हैं, दिली दर्जा। अक्ल के दर्जे पे जो शख्स ईमान वाला हो लेकिन दिल उसका ईमान के साथ ना हो, वो मुनाफिक है। अक्ल का दर्जा ईमान का 100% होता है। आप कह सकते हैं हम 100% अल्लाह पर ईमान लाते हैं, रसूल पे लाते हैं, आखरत पे लाते हैं, बट दिल का मामला ये ऊपर नीचे, अप्स एंड डाउन्स। कुरान पढ़ेंगे तो बहुत भागने को दिल करेगा अल्लाह की तरफ, और अगर आप जरा सा यूट्यूब पे कोई गलत चीज नजर पे पड़ गई तो ईमान का दर्जा नीचे जाएगा। ये जो कुफर और ईमान की आंख मचोली है ना, यही असल खेल है, इसलिए ये ग्रोह बहुत खतरनाक है। एक बल्ब को जलाएं फिर बंद करें, जलाएं फिर बंद करें, फ्यूज हो जाएगा। फ्लक्चुएशन आती है ना कभी बिजली में, तो कई मशीनें जल जाती हैं घरों में, क्योंकि एकदम बहुत तेज़ बिजली आई फिर कम हो गई, फ्रिज जल गई, कंप्यूटर जल गए। तो कुछ लोग जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कभी नेकियां करेंगे लगेगा इनसे आगे कोई जाना ही कोई नहीं वाला, और कभी ऐसे ठंडे होके पड़े कि फ़र्ज़ नमाजें भी छोड़ दी। तो इंशाल्लाह जब हम अपने ऊपर लेंगे तो अल्लाह ताला फिर हमारी इसलाह भी तो करेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे रुक जाते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون